Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
सभी ने कहा जब सब राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन होगा। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, सबको राजा बनाएंगे पर एक शर्त है। वह शर्त यह है कि एक वर्ष के लिए सब राजा बनेंगे, एक एक वर्ष के लिए बांट दिया, सबका ऊपर नीचे नाम लिख लिया, क्रम से सबके सब एक एक वर्ष तक राजगद्दी पर बैठेंगे। सभी बड़े खुश हुए, पर बोला कि अभी हमारा वाक अधूरा है, राजा तो बनेंगे पर एक शर्त है, एक वर्ष के बाद सबको नदी के उस पार छोड़ दिया जाएगा और वहां पर वे जंगली जानवरों के भोजन बन जाएंगे। सब घबराए, बोले कि राजा बनेंगे, एक वर्ष तक तो मजे से जीवन यापन करना है, और जैसे एक वर्ष बीतेगा, बारहवां महीने आते ही जबरन नदी को उस पार भेज देंगे, वहां पर भेड़ सिंह भालू का आहार बन जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में एक बड़ा बुद्धिमान आदमी था, वह तैयार हुआ। राजा ने कहा कि शपथ लेने के पहले सोच लो, शपथ पत्र पढ़ने के पहले सोच लो कि एक वर्ष तक तो राजा बनोगे, परंतु बारहवें महीने जबरन हम तुमको उस पार भिजवा देंगे। उसने कहा कि मैं तैयार हूं। जो राजा बनने वाला था उसने तर्क किया कि एक वर्ष के लिए राजा बनूंगा तो मेरे अधिकार क्या होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकार आप कुछ सब कुछ मिलेंगे, आप जो चाहें सो सब कर सकते हैं, यहां तक कि सभी आपके प्रजा होंगे, मैं भी आपका प्रजा, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा, जो कहेंगे सब हम लोग करेंगे, आपके लिए गला भी कटा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा बहुत अच्छी बात, शपथ ग्रहण कर लिया, एक वर्ष के राजा बना दिया। राजा बनने के बाद तीन दिन तक तो अपने राज्य के खजाना का, संपत्ति का उसने पूरा मुआयना किया। तीसरे दिन घोषणा कर दिया कि हमारे राज में जितनी सेनाएं हैं, सारी सेना इस पार उस पार एक ब्रिज पुल बनाने के लिए लगा दिया जाए, सारी सेना को राज से एक पुल बनाने के काम में लगा दिया, इस पार उस पार नदी को उस पार जाने के लिए पुल। बड़ा सुंदर चार महीने पुल तैयार हो गया। चार महीने के बाद फिर एक संसद बुलाया, उसमें बड़े बड़े जाने माने कारीगर थे, विद्वान थे, प्रधानमंत्री थे, सबके सामने कहा कि देखो हमारे शासन के चार महीने बीत गए और हमने बड़ा सुंदर नदी को उस पार जाने के लिए सेतु बनवा दिया है, अब हमारे रह गए आठ महीने। आठ महीने में से चार महीने निकाला और कहा चार महीने में जैसा ये राजमहल है ना, बिल्कुल ऐसा ही उस पार तैयार होना चाहिए। सारे सैनिकों को लगा दिया, चार महीने के अंदर बड़ा सुंदर जंगल में राजभवन बनवा लिया, बाग बगीचे लगा दिए गए, फूल फुलवारी लगा दी गई। आठ महीने हो गए, प्रधानमंत्री को बोला कि देखो आठ महीने बीत गए, अब रह गए हमारे चार महीने। दो महीने में उसने सबको बोल दिया कि उस पार सारे जितने भी भंडार है भंडार को भर दो, सोने चांदी से अनाज से भर दो। दो महीने के अंदर पूरा खजाना जंगल के उस पार जो नया राजमहल था वहां भरवा दिया, साजबाज सब करवा दिया। अब सारी सेना को बुलाया, प्रजा को बुलाया, प्रधानमंत्री को बुलाया, बोला देखो दस महीने हमारे शासन के बीत गए और तुम लोग जबरन हमको उस पार भेजोगे ना, इसकी अपेक्षा मैं आज ही इस्तीफा दे रहा हूं, अपना तुम लोग नया राजा चुन लो और मैं अब उस पार जा रहा हूं और पैदल चलकर जाऊंगा। तुमको भेजने की जरूरत नहीं। सबने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज अब उस पार जाने से क्या फायदा, आपने तो यहां से बढ़िया वहां राजमहल बना दिया, सारे खजाने भिजवा दिए, सारी व्यवस्थाएं करवा ली, आप चाहे इस पार रहो चाहे नदी के उस पार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भगवान ने भी हम लोगों को राजा बनाया, कितने दिन के लिए बनाया है, 100 वर्ष के लिए। पर 100 वर्ष के लिए जो बनाया उसमें भी शर्त है, कुरुवन नेवे कर्माणी जिजी विशेष सतगुण क्षमा, आप सत्कर्म का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक यापन कर सकते हैं, बिना सत्कर्म किए 100 वर्ष की आयु भी भारी हो जाती है। तो हम लोगों को भगवान ने 100 वर्ष के लिए राजा बना दिया है, सारा अधिकार दिया है, स्वतंत्र कर्ता। पाणिनि महर्षि का सूत्र है कि कर्ता स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, परंतु फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। 100 वर्ष में आप चाहे कुछ भी करो, भगवान ही बोलने वाले हैं, परंतु जैसे ही आयु समाप्त होगी जबरन नदी के उस पार नौका पर बैठा के भेज देंगे। पर यदि हम विवेक से 100 वर्ष के अंदर ही इस पार से उस पार मल्लय की धरती से स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक के बीच में जो सेतु है, उपनिषद में आता है ए सेतु विधर्णम च, यही परमात्मा सेतु है। जो मुक्षु है साधक उपासक हैं उनके लिए सेतु का काम करता है। जिस प्रकार से सेतु नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, ऐसे ही जो भगवान की भक्ति है सत्संग है स्वाध्याय है यह सेतु का काम करता है। तो सत्संग स्वाध्याय के द्वारा हम सेतु का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो मनन होता है, ये मनन समझो कि मनोराज्य बोलते ना हम लोग, मनन मतलब मनोराज्य। तो हम लोग जो मनन करके एक सुंदर अपने लिए परलोक में राज्य निर्माण करते हैं, और निध्यासन के द्वारा सारे विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार होता है और सजातीय वृत्ति का प्रवाह, इसका नाम निध्यासन है। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करते हुए सजातीय वृत्ति प्रवाह का नाम निध्यासन है। तो जैसे कि राजा ने उस पार खजाने भर दिया, वैसे ही हम लोग भी ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति के द्वारा जो है सब कुछ वहां पर भेज देते हैं, कुछ शेष नहीं रहता है। इसके बाद इस संसार के सारे मनुष्य सारे प्राणी आप जाओगे तो भी हाथ जोड़ेंगे प्रार्थना करेंगे। जैसे बड़े बड़े महापुरुष चले जाते तो भी हम लोग निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, रहते तो भी उनकी स्तुति प्रार्थना वंदना होती है और जाने के बाद भी। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसमें भगवान ने आपको 100 वर्ष के लिए राजा बना दिया, स्वतंत्र कर दिया है। अब आगे का काम आपको करना है, या आप राजभोग करें या जो है परलोक संबंधी तैयारी करें, आपको पर निर्भर करता है। एक और श्लोक कर ले, 10वां श्लोक है।
तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरिबिरंचि हरिरध परिचेतुं यातौ अनलमनवस्कंद वपुष ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगिणाभ्याम गिरीशयत स्वयं तस्ते ताभ्याम तव किमनुवृत्ति न फलति। तवैश्वर्यम यत्नात्,
भगवान के ऐश्वर्य को समझने के लिए बिरंचि हरि अधः, बिरंचि मतलब ब्रह्मा जी ऊपरी ऊपर गए। सृष्टि के आदि में एक प्रसंग आता है, जैसे ही ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ ब्रह्मा जी का निर्माण होने के बाद ब्रह्मा जी में और हरि में विवाद हुआ कि कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ। ज्येष्ठता श्रेष्ठता का विवाद देख करके भगवान शंकर ने विचार किया कि इनको हमने उत्पन्न किया, प्रजापति पद प्रदान किया कि सृष्टि का विस्तार करें पालन करें, और ये जब आपस में विवाद करेंगे तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। इस स्थिति को देखकर उनके सम्मुख एक दिव्य अनल स्कंद वपुष, अनल बोलते अग्नि को, अग्नि का स्कंद मतलब खंभे के समान ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ जो कि आकाश से भी ऊपर पाताल से भी नीचे। दोनों ने विचार किया कि जो इसका पता लगा लेगा वही हम में से श्रेष्ठ होगा और ज्येष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर गए, रजोगुणी ब्रह्मा जी हैं, रजोगुणी हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है, रजोगुण का स्वभाव है, और सत्वगुणी जो होता है उसका शांत स्वभाव होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु ने कहा चलो कोई बात नहीं हम नीचे जाते हैं। तो भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए। परिच्छेत्तुम यातौ, परिच्छेत्तुम का अर्थ है उस ज्योतिर्मय पिंड को नापने के लिए, परिच्छिन्न करने के लिए दोनों यात्रा किए। परंतु अनलम, अनलम का अर्थ है अलम नहीं हुए, पर्याप्त नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए। इसके बाद जो है ततो भक्ति श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के प्रार्थना करने लगे गिणद्भ्याम। पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि उनकी प्रार्थना को सुन करके स्वयं तस्थे ताभ्याम ताभ्याम हरि विरंचिभ्याम विष्णु और ब्रह्मा के सामने स्वयं ही अभिव्यक्त हुए। तव किम अनुवृत्ति न फलती, क्या आपके अनुवृत्ति मतलब सेवा या समर्पण फलित नहीं होता है, अर्थात अवश्य फलित होता है। जब ब्रह्मा और हरि दोनों मिल करके आपके ऐश्वर्य का परिच्छिन्नता माप नहीं कर सके तो सामान्य प्राणी कैसे कर सकता है, और मैं पुष्पदंताचार भी भला कैसे कर सकता हूं। आपके ऐश्वर्य को वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, बुद्धि भी उसको चिंता नहीं कर सकती है। इस विषय में यह ब्रह्मा और हरि का प्रमाण दिया, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपका गुणगान कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। क्योंकि पुष्पदंताचार्य जी से अनजाने में अपराध हो गया था, वे भगवान शंकर के निर्माल्य को, निर्माल्य बोलते हैं पूजा के बाद जो बचा हुआ बिल पत्र जल अक्षत होता उसको निर्माल्य कहते हैं, तो निर्माल्य को भूल से उन्होंने लांग दिया था, अतिक्रमण किया था, वो तो क्षमा याचना कर रहे हैं। स्वयं तस्थे ताभ्याम, यही बात उपनिषद में आता है कि स्वयं ईसा तनु विवीणते, ये जो आत्मा है स्वयं ही आपके सामने अपने तनु मतलब स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। जिसको आत्मा वरण करती उसके सामने प्रकाशित वह हो जाता है। तो भगवान के चरणों में सर झुकाने से सब कुछ मिल जाता है, इस बात को दसवें श्लोक में बतलाया। अनुवृत्ति बोलते समर्पण को, आज भी जब किसी का तिरस्कार करना होता है तो हम कहते हैं कि तेरे सिर पर हम चार जूते मारेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब सिर जो प्रधान है उसके ऊपर हम लोग जूता का प्रहार करके किसी का तिरस्कार अपमान करते हैं। और यह बात पूरी दुनिया प्रसिद्ध है, चाहे भारत हो या अमेरिका, परंतु हमारे देश की विशेषता है, महिमा है कि हम अपने सिर को किसी के चरणों में झुका करके उसको सम्मानित करते हैं। और यह परंपरा पश्चिम जगत में नहीं है, पश्चिम यह तो खोज निकाला कि किसी का अपमान कैसे हो, परंतु सम्मान कैसे हो, यह खोज केवल भारत ने किया। अनादि काल से हमारे यहां परंपरा है कि चाहे देवता हो या गुरुजन हो या श्रेष्ठ हो या घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, उनके चरणों में सिर झुका करके जब हम समर्पण करते हैं तो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। विवेक चूड़ामणि में बार बार आता है, अहंकार एक ऐसा विकार है जिस अहंकार के द्वारा जीवात्मा परिच्छिन्नता को प्राप्त हुआ। परिच्छिन्नता मतलब कि ये भूमा रूप था, व्यापक साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, परंतु जैसे ही अहंकार हुआ कि अयम अहमस्मि, यह मैं हूं, 3.5 हाथ का अहंकार होते ही, भावना होते ही अपने आप को हाल मास चाम, जो मल मूत्र का भंडार है, ये जो शरीर है हमारा, आप विचार करें तो केवल मल मूत्र का ये समझो घर है। स्वयं तो चैतन्य है, निर्मल है, उस चैतन्य निर्मल को भी आपने इस मल मूत्र के भंडार में कैद कर दिया और इसी में अहंकार कर लिया, यह मैं हूं। जैसे अहंकार हुआ, अहंकार होने के बाद विषयों का चिंतन, अब विषयों के चिंतन करने के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद में सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, तो संसार का जड़ है अहंकार, अहंकार का कारण है अज्ञान। जब हम किसी के चरणों में अपने आप को झुकाते हैं, सर रखते हैं, तो वहां पर अहंकार गलता है और अहंकार के विसर्जन से परम सुख की उपलब्धि होती है। सारे शास्त्रों का तात्पर्य है अहंकार को विसर्जित करना, इसलिए विसर्जन में तात्पर्य है क्योंकि प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना, अपने जीवन के अशेष विशेष दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है और यह तभी उपलब्ध होगा जब हमारा अहंकार विसर्जित हो जाए। यह प्रत्यक्ष है, हम सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति में अहंकार नहीं होता है, यहां तक कि मैं भी विसर्जित हो जाता है, मैं भी समाप्त हो जाता है। सुषुप्ति में जाने के बाद यह मैं हूं ऐसा भान नहीं होता है, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, विद्वान हूं, मैं महात्मा हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं सेठ हूं, कोई भी अहंकार नहीं होता है, न देश का अभिमान, न क्षेत्र का, न काल का, न भाषा का, न जाति का, न गुण का, न कला का, कोई अभिमान नहीं होता है। और जब तक अभिमान होता है तब तक नींद भी नहीं आती है, आप नींद की एक के बाद एक गोली खाते जाइए परंतु नींद नहीं आनी है और बिना निद्रा के सुख की प्राप्ति नहीं होनी, बैटरी चार्ज भी नहीं होगी। जैसे ही अहंकार विगलित होता है वैसे ही आप परमानंद में डूब जाते हैं, सारे दुख समाप्त 4-6 घंटे के लिए, आए दिन ये प्रत्यक्ष सबके जीवन की अनुभूति है। जागृत अवस्था में भी यदि हमने अहंकार को गला दिया, विसर्जित कर दिया, तो निश्चित ही हमारा जो जीवन है, जिसको कहते हैं कि बड़ा दुख है, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, तो इस संसार में रह करके भी परमानंद की अनुभूति होगी, जैसे सुषुप्ति में होती है वही आनंद जागृत में स्वप्नावस्था में भी हो सकता है, बशर्ते हम अहंकार को गलाने का अभ्यास करें। पर आज की तो पढ़ाई ऐसी है कि उल्टे हमारे मन में अभिमान पैदा करती है, सीमित अहंकार। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रातः काल उठते ही माता पिता गुरुजनों के चरणों में सर रखकर प्रणाम करते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी आता है 10वें स्कंद में, वे भी अपने सुधर्मा नामक सभा में जाने के पूर्व वसुदेव देवकी और बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखकर नमस्कार करते, इसके बाद उद्धव जी के साथ सुधर्मा नामक सभा में आते थे। परंतु आज हम लोगों को संकोच होता है कि हम तो इतने बड़े, हम कैसे जो है माता पिता बड़े बूढ़े के चरणों में सर झुका। एक नया परंपरा चला है ना, हाथ से अत्याधुनिक है, इसको कहते हैं कि ये भी नमस्कार का डेवलप है, विकास है, है? हाँ देखो गिरीश भाई बढ़िया बता रहे हैं, एक बार मैं भी कहीं फोन सुन रहा था हरिद्वार में ही, तो फोन तो महाराज जी का था अपने दशम पीठाचार्य जी का, तो हमारे यहाँ का एक ही फोन का कनेक्शन सब जगह है, कोई भी उठा सकता उठाता है। तो उठाया तो उसने कहा हाय महाराज जी है। हमने कहा हाय क्या होता है, पता ही नहीं था। उन्होंने कहा हाय हाय यहाँ कोई नहीं भाई। तो वो समझ गए कि ये जानते नहीं हाय का मतलब क्या होता है। मैं सोचा कि हाय कोई आदमी होगा, हाय कोई जो है बात करना चाहती है, कोई स्त्री फोन की। अब बताओ आप नमस्कार है भी हाय कहते हैं, तो वही हाय जो है ना पूरा जीवन भर लगा रहता है। देखो हमारे यहां जब जन्मदिन मनाते हैं ना तो दीपक का प्रज्वालन करते हैं। जितने वर्ष जन्म के बीत जाते हैं, मान लीजिए किसी के जन्म के 50 वर्ष बीत गए ना तो 50 दीपक जलाते हैं, ऐसी परंपरा है पुरानी प्राचीन। तो 50 वर्ष बीत गए तो 50 मिट्टी के दीवा में घी या तेल भर के जलाते हैं। जलाने के बाद जो है भगवान का स्मरण करते, कीर्तन करते, भजन करते, मिठाई बांटते हैं, मतलब कि जीवन में रोशनी फैले। और वैसे भी जब घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, ये घर का चिराग है, ये घर का दीपक है, हमारे कुल परंपरा में रोशनी फैलाएगा। परंतु पश्चिम में क्या होता है, उल्टा। दीपक को बुझाते हैं ना आप, केक काटते हैं, दीपक को बुझाते हैं। तो दीपक बुझाने का मतलब कि वे जो है चाहते हैं कि बस, जैसे उल्लू होता है ना, उल्लू को देखो दीपक पसंद नहीं आता है, जो भी नक्तर उल्लू होगा वो दीपक को बुझा देगा, या जो है सूर्य की भी निंदा करेगा कि सूर्य हमारे काम में खलबली मचा रहा, वो अंधेरे में जाके छिप जाएगा। वैसे महाराज जो पश्चिम वाले केक काटते हैं तो आप देखे होंगे ना, दीपक बुझा देते हैं, मतलब इनको जो है ये जो है उसी को अंधकार को पसंद करते हैं, अंधकार में जीना चाहते हैं। अंधकार होगा तो बहुत समस्याएं आएंगी, अंधकार होने के बाद आप अपने आप को ही पहचान नहीं सकते, ना दूसरे को पहचान सकते, ना बड़े बूढ़े को। इसीलिए हमारे जब जन्मदिन मनाते हैं तो पहले जो है ना दीपक प्रज्वालन होता है, भगवान का सुमिरन होता है कि आपकी कृपा से हम जो है इतने वर्ष तक सकुशल आयु बिता लिए, आगे की आयु वैसे बीते। तो देखो भगवान राम प्रातः काल जो बड़े बूढ़ों को नमस्कार किए, तो नमस्कार करने से क्या छोटे हो गए कि बड़े हुए, ईमानदारी से बताना, हाँ छोटे नहीं हुए। और हनुमान जी की पूजा उनसे ज्यादा होती है, राम जी के मंदिर तो कम मिलेंगे आपको, हनुमान जी के मंदिर बहुत ज्यादा है। हनुमान जी देखो हमेशा वज्रासन में बैठ के हाथ जोड़े रहते हैं कि जो सेवा जो हुक्म जो आज्ञा, किम अनुवृत्ति, बस किम मतलब क्या अनुवृत्ति है, क्या आज्ञा है, हमेशा राम जी के तरफ देख करके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो सेवा की बड़ी महिमा है। यदि हमारा अहंकार गल जाए, गलाने का तरीका है, यदि हम बड़े बूढ़ों के चरणों में सर झुकाते हैं तो सर झुकाते अपने आप अहंकार विगलित होता है, और विगलित होते अंतःकरण निर्मल होता है, और अंतःकरण के निर्मल होते ही फिर जितने भी सद्गुण है वे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि उपनिषद कहती है आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे स्वरग्रंथिनाम भी प्रमोक्ष। यदि हम अपने जीवन के आहार व्यवहार सुधार लें, आहार का तात्पर्य है आहरियते अनेनेति आहार, जो इंद्रियों से विषयों का सेवन इसका नाम आहार है। जैसे आंख का भोजन है रूप, कान का है शब्दों को सुनना, पैर का है गमनागमन, हाथ का है लेन देन, जीव का है बोलना। तो जो आंख से हम देखें वह क्या सोचे, सर्वत्र चैतन्य है, परमात्मा की भावना करें। और वास्तव में संसार भावना पर ही निर्भर है। ब्रह्मा जी ने एक पिंड बनाया, इस पिंड पर हमने भावना कर लिया, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, है एक पिंड। हाल मास चाम का 3.5 हाथ का एक पिंड है, उसी पिंड के ऊपर सारी कल्पनाएं हैं, सारा विवर्त है। विवर्त मतलब आरोप है, किसी ने कहा कि देखो ये तो मेरा पुत्र है, दूसरे ने कहा कि पुत्र नहीं ये मेरा भतीजा है, तीसरे ने कहा भतीजा नहीं ये मेरा भांजा है, चौथे ने कहा भांजान ये मेरा दोस्त है, पांचवें ने कहा बिल्कुल नहीं ये मेरा दुश्मन है। बताओ क्या है वो दोस्त है कि दुश्मन है? कि केवल भावनाओं से हम वैसा मान करके तमाम व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति दोस्त मानेगा उसे बड़ी प्रसन्नता होगी देख करके, और दुश्मन मानने वाला देखेगा दूर से आ रहा है तो रास्ता काट लेगा, इधर से चलो रास्ता अलग नाप लेगा। तो जैसे कि संसार में भावनाओं से व्यवहार करते ऐसे ही यदि भावना करनी है तो बढ़िया भावना करें। जब तक चैतन्य है तभी तक हम कहते हैं कि ये दोस्त है दुश्मन है भाई है भतीजा है पुत्र है। चैतन्य के निकलते मिट्टी का ढेर हो जाता है, सब कुछ चैतन्य है। जब सब कुछ चैतन्य है तो हम चैतन्य रूप की भावना क्यों न करें? तो आंख से जब भी देखे तो क्या समझे साक्षात ब्रह्म है, नारायण है, श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर है, राम है। कान से जो भी कुछ सुने तो क्या समझे शब्द ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्मी है। वाणी से बोलना हो तो हमेशा भगवान के नाम को उच्चारण करें। कान से सुनना ही हो, सुनना मजबूरी हो तो हमेशा जो है कथा श्रवण करें। ये जो है आहार की शुद्धि है। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण के निर्मल होते ही अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, और स्वरूप की अभिव्यक्ति का मतलब कि हम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। अब शेष कल विचार करेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।